Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Shuddhatmane Namah. Samyak Darshana Charana Guna. केवल ज्ञान उपाय प्रभु भये भजो शिवराय जिन वाणी के ज्ञान ते होत तत्व श्रद्धा चरण धारि केवल लब्धिसार ग्रंथ के आधार से हम यहाँ प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व से पूर्व होने वाली पांच लब्धि उसका स्वरूप देख रहे हैं। पहले तो अभी हम कर्म की कुछ बातें देख रहे हैं सामान्य तरीके से, क्योंकि हमारा विषय शुरू करने के पहले ये पूर्व तैयारी रूप से हमें देखने हैं। पंच लब्धि क्या होती है, प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व क्या होता है, कौन से जीव उसको प्राप्त कर सकते हैं, इसकी बात तो क्रम से आने वाली है। तो हमें ऐसा लगे ये तो कर्मकांड की बातें आप यहाँ क्यों ले रहे हैं, परंतु इसको जाने बिना आगे जब इसके नाम आएंगे और इसके संबंध में जो कोई वहां क्या क्या परिवर्तन होता है कर्मों में उसकी बात आएगी, तो उसके लिए पूर्व तैयारी रूप से हम इसको देख रहे हैं। कल हमने मूल प्रकृतियों को देखा था, याद है कितनी है मूल प्रकृति? आठ है। हमने देखा था घाती कर्म चार है, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी और अंतराय, और अघाती भी चार है, वेदनीय आयु नाम और गोत्र। इसको कहते हैं मूल प्रकृति। इसके जो पेटा भेद है सब डिविजन्स उपभेद जिसको कहते हैं, तो हरेक के अपने अपने अलग अलग, जैसे ज्ञानावरण है तो पांच प्रकार के है तो उसको कहेंगे उत्तर प्रकृति। तो हरेक जो मूल प्रकृति देखी है उसके जितने जितने भेद होंगे उसको कहेंगे उत्तर प्रकृति। आज अपने जो दूसरा प्रत्रांक है या दूसरा प्रकरण है उसमें कर्म की उत्तर प्रकृतियों की बात चलेगी, उसके नाम देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे आपने यहाँ मुझे लगता है पढ़ लिया है ये सारा, तो आसान होगा क्योंकि उसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हम उत्तर प्रकृतियों की बातें देखेंगे। तो ज्ञानावरण की, हमें ज्ञान के पांच जैसे पर्याय की अपेक्षा पांच प्रकार के ज्ञान हमने देखे थे, तो यहाँ आवरण की बात है। तो पांच प्रकार के कौन से देखे हमने? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। और यहाँ आवरण की बात है तो उसके आगे आवरण शब्द जोड़ देना। तो मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, ऐसे पांच प्रकार के ज्ञानावरण कर्म पाए जाते हैं। ये तो आसान है, इसमें कुछ यानी ज्यादा समझाने जैसा है ही नहीं है। हमें तो उत्तर प्रकृतियों के नाम अभी देखने हैं। अब दर्शनावरण की बात करते हैं। दर्शन, अभी मेरा प्रश्न सुनना, दर्शन गुण की कितनी प्रकार की पर्याय हमने कल देखी थी? कल अपना यहाँ विषय चला था विशेष गुण में, आपने यह जो ज्ञान चेतना दर्शन चेतना देखी थी, तो दर्शन उपयोग के कितने भेद देखे थे? दर्शन गुण की बात चल रही है। चार कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, पर्याय तो चार ही है, परंतु दर्शनावरण कर्म नौ प्रकार के हैं। तो दर्शनावरण कौन से? अभी जो चार हमने देखे थे उसके आगे आवरण लगा दो, तो चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण, ये तो चार तो दर्शनावरण हुए। और जो पांच प्रकार की जो निद्रा है, निद्रा प्रचला, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान वृद्धि, ये जो पांचों ही निद्रा नाम के जो कर्म है वो दर्शनावरण कर्म है। तो वो दर्शनावरण जो कर्म है किसका घात करते होगे? कोई भी आवरण वाला जो कर्म है वो किसका घात करता है?
दर्शन गुण की पर्याय का।
हाँ, पर्याय का, परंतु पर्याय में भी कौन सी पर्याय का घात करते हैं? जागृत अवस्था का, क्योंकि अपने प्रतिपक्षी का घात करता है। देखो अभी हम केवल ज्ञानावरण की बात करते हैं, दर्शनावरण को बाद में समझेंगे। केवल ज्ञानावरण कर्म किसको नहीं होने देता या किसका घात करता है, अभी हम इतने उसी की भाषा बोलेंगे ना, निमित्त की भाषा बोलेंगे। अब वो द्रव्य का गुण का पर्याय का घात नहीं करता, वो समझ कर हम उसकी भाषा में बोलेंगे। तो किसका घात करता है केवल ज्ञानावरण, किसका घात करता है अरविंद भाई?
नाम पर्याय,
ज्ञान पर्याय के पूरा घात करते हैं। केवल ज्ञानावरण का कार्य क्या है, जितना भी आप कह सकते हैं,
केवल ज्ञानावरण, केवल ज्ञान पर्याय,
केवल ज्ञान नहीं होने देता। अभी सबको केवल ज्ञानावरण का उदय चल रहा है, तो यहाँ किसी को केवल ज्ञान नहीं है, परंतु क्या केवल ज्ञानावरण कर्म मति ज्ञान को रोक सकता है? केवल ज्ञानावरण का उदय चल रहा है, परंतु केवल ज्ञानावरण का उदय है तो हमें केवल ज्ञान नहीं है, पर हमें मति श्रुत ज्ञान तो है कि नहीं है? तो केवल ज्ञानावरण कर्म मति और श्रुत ज्ञान को नहीं रोक सकता, ना ही अवधि मन परे को रोक सकता है। किसको रोकता है? अपने प्रतिपक्षी को रोकता है। तो आवरण में ऐसे ना, उसका अपना अपना प्रतिपक्षी। मति ज्ञानावरण का कार्य कहाँ चलेगा? मति ज्ञान के संबंध में चलेगा, वो श्रुत ज्ञान के बारे में उसका कार्य नहीं चलेगा। अवधि ज्ञानावरण किस में निमित्त है? वो तो अवधि ज्ञान को रोकने में निमित्त है, वो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में उसका कुछ नहीं चलेगा। ऐसे ही केवल ज्ञानावरण कर्म जब कहते हैं, पूरे ज्ञान को तो रोकता ही नहीं है, केवल ज्ञान नहीं हुआ है पर्याय में, परंतु उस कर्म में ऐसी ताकत नहीं कि वो मति ज्ञान को रोके। मति ज्ञान तो तभी चल रहा है क्योंकि केवल जब तक बारवा गुण स्थान तक सभी जीव कैसे है, छद्मस्त है, आवरण वाले है, सबको केवल ज्ञानावरण का उदय है, परंतु सभी जीवों को मति श्रुत ज्ञान, एटलीस्ट मति श्रुत ज्ञान तो है ही सबको, वो तो एकेंद्रिय से लेकर सबको होता ही है। रमेश भाई ख्याल में आता है क्या कहना चाहती हूँ? केवल ज्ञानावरण है, उसका निमित्त किस में बनेगा? केवल ज्ञान के नहीं होने में, परंतु वो मति ज्ञान को रोक नहीं सकता, श्रुत ज्ञान को रोक नहीं सकता, अवधि ज्ञान को नहीं रोक सकता, ये बात बताना चाहते। ऐसे ही अभी बात चल रही है दर्शनावरण की। ये जो निद्रा नाम के जो पांच कर्म है, वो किसको रोकते हैं, किसका घात करते हैं? अपने प्रतिपक्षी का। तो निद्रा का प्रतिपक्षी कौन है? जागृत अवस्था। तो निद्रा में भी दर्शन गुण का कार्य तो चलेगा, वहां पर भी अचक्षु दर्शन या जो कोई वहां चल रहा है निद्रा में, निद्रा में भी जानने जानने देखने का कार्य चलता है कि पूर्ण मिट जाता है? आज अच्छी नींद आई, किसने जाना? अरे कुछ जान नहीं रहते या हमें अच्छी नींद नहीं आई या सपने देख रहे, जो कुछ वहां तो ज्ञान का भी कार्य वहां भी चलता रहता है, नहीं तो सो के रहेंगे ना, कोई जानने का कार्य नहीं होगा वहां, कोई राग द्वेष नहीं होगे, कोई बंधन नहीं होगा, अच्छा है तो सोना तो वितरकता का लक्षण मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है।
तो जो ये निंद्रा है, हाँ? वो वास्तविक निंद्रा है, वो आत्मा की जागृत अवस्था, वो ये उपमा के अनुशासन में बोलता है कितनी गाढ़ी निंद्रा होती है, या ऐसे ये ग्रामर भाषा के लग
नहीं नहीं, वो निद्रा की जो डेप्थ है अलग अलग, एक हाँ, लाइट निद्रा है।
निंद्रा तो मैंने समझ लिया,
हाँ,
पर निंद्रा वो रेगुलर स्लीप बोलता है या ऐसी जागृत अवस्था कोई और है?
नहीं नहीं,
आत्मा की
नहीं नहीं, वो आत्मा की जागृत अवस्था जिसको समय दृष्टि को जो कहने में आते ना, वो जागृत, वो अलग बात है। हाँ, ये कहीं कहीं लिखते ना, ये आत्मा अभी जागृत अवस्था या सुप्त अवस्था, वो तो समय दृष्टि को कहीं वो जागृत है ऐसा कहने में आता, उसकी बात नहीं है, ये तो रेगुलर जो जागृत अवस्था है। हाँ, और वो कभी नींद आती है तो वो तो सुप्त अवस्था, उसकी बात है, रेगुलर लौकिक बात है।
रियलिटी में,
हाँ, रियलिटी में जो, यानी जिसको हम स्लीप कहते हैं, रेगुलर स्लीप, वही स्लीप लेना यहाँ पर।
आत्मा तो कभी सोती नहीं
है। हम्म,
आत्मा,
हाँ,
सोती
आत्मा, आपका प्रश्न है आत्मा सोती है कि नहीं सोती, तो बस पर्याय में चल रहा है उसके, उतने उसके परिणाम, उसका विभाव परिणाम चल रहा है उसके, क्योंकि वो वहां हीनता चल रही है ना ज्ञान की, जैसे अभी हम जागृत है, अभी कोई कुछ बोल रहा है उसका भाषण होता है बराबर, समझ में आती है बात, और बीच में हमें झपकी आ जाए तो क्या होता है, वो क्या चल रहा था छूट जाता है, उतनी तो ज्ञान की हीनता हो जाती है, दर्शन की हीनता होती है, तो उसको यहां जागृत और सुप्त अवस्था कहा है। जिसको रेगुलर भाषा में हम लौकिक में जिसको जागना और सोना कहते हैं, वही बात यहां पर ले लेना है। तो ये दर्शन गुण की तो चार पर्याय है, परंतु दर्शनावरण नौ प्रकार के है कर्म। ये सारे जो अलग अलग प्रकार की पांच निद्रा बताई है वो भी उसमें है, वो पांच उसको इंक्लूड करेंगे तो टोटल यहां नौ प्रकार के दर्शनावरण होते हैं। यानी उसमें जो बिल्कुल लाइट निद्रा है उसको हम कहेंगे निद्रा, उससे जरा गाढ़ी है उसको कहेंगे निद्रा निद्रा, इस तरह से। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसकी डिटेल्स तो यहां लिखे हुए भी है, परंतु अपना विषय हमें आगे बढ़ाना है ना, इसलिए थोड़े आगे बढ़ेंगे। ये निद्रा के जो वर्णन है अलग अलग शब्दों का अर्थ यहां भी बताया है। ये हिंदी में 16 पृष्ठ है, नंबर 16 नंबर, गुजराती में 15 नंबर के पृष्ठ पर। इस त्यान वृद्धि के हमने देखा था कि वो नींद में भी चलकर आता है, कुछ कार्य करके आता है, पता नहीं चलता है, इस तरह से उसके अलग अलग अर्थ यहां लिख दिए। अभी हम आगे बढ़ेंगे, मोहनीय कर्म की बात देखेंगे। मोहनीय कर्म तो दो प्रकार उसके मेन डिविजन जिसको हम कहेंगे, एक है दर्शन मोहनीय और एक है चारित्र मोहनीय। दर्शन का अर्थ है यहाँ श्रद्धा समझना। हाँ बोलो, आपका प्रश्न है।
निंद्रा का है ना, हाँ, दूसरा दूसरा निंद्रा निंद्रा,
हाँ हाँ,
प्रचला प्रचला, तो डज इट मीन दैट इट इज, इफ इट्स अ गॉड निंद्रा इट मीन्स इट्स बुरे और भले, और डज इट मीन एनीथिंग?
हाँ देखो, ये जितना आवरण ज्यादा है, आपका प्रश्न ऐसा है, ये जो निद्रा और निद्रा निद्रा और पछला 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 अलग अलग टाइप जो बताए हैं निद्रा के, तो वो बुरा है क्या नहीं, ऐसा पूछ रहे हैं ना। हाँ, तो ये सारे ही पाप कर्म ही है। ज्ञानावरण कहो दर्शनावरण कहो, सभी उसका उदय चलता है। तो जागृतपना जिसको हम कहते हैं ना कि वी आर अटेंटिव टू समथिंग, वो तो हीन हो जाती है अपनी जागृत अवस्था, तो है तो वो बुरा ही, क्योंकि आत्मा का वहां तो विकास नहीं हो रहा है गुणों का। तो ज्ञान जो, देखो हम केवली भगवान के निद्रा नहीं ऐसा कहते, वो दोष से रहित है, निद्रा से रहित है, वो तो परिपूर्ण विकसित ज्ञान है उनका, तो वहां कोई निद्रा की बात ही नहीं है, केवल दर्शन भी चल रहा है और केवल ज्ञान भी चल रहा है। तो उनके तो बिल्कुल कब तक नहीं सोएंगे, अनंत काल तक
कभी नहीं।
हाँ, तो हमें डर लगेगा, अरे नहीं चाहिए, हम तो सोना चाहते हैं। हाँ,
जो नहीं सोता है, हाँ, जो बहुत सोता है, हाँ, दोनों को मैं ट्रीट करती हूँ।
हाँ, आप दोनों को ट्रीट करते हैं। क्योंकि नहीं सोने वाला भी बहुत चिंतित हो जाता है, हाँ, आपके पास आता है, क्योंकि उसके कारण उसको और कोई प्रॉब्लम हो जाती है। परंतु ये नहीं सोने रूप जो अवस्था है ना, देखो मुनियों के भी निद्रा कितनी कम हो जाती है। हम अपनी बात देखते हैं, हमें कोई कार्य करने की हमने ठान लिए तो अपनी कितनी निद्रा कम हो जाती है। हाँ, कोई बिना कोई जगह हम उठ जाते हैं, होता है ना। अभी आप अपनी याद करो, जब आप मेडिकल में अपीयर हुई थी या पहले एसएससी में या कोई बड़ी परीक्षाएं देनी थी तो क्या होता था, अरे एक दो घंटे नींद आती थी, बाकी तो नींद ही नहीं लगती थी। तो यहां जो आत्मा के प्रति अभी जिस इतना सावधान हुआ है उसको नेचुरली नींद कम हो जाती है, और उसका तो भले निद्रा नहीं आती तो उसको चिंता नहीं होती, उसका तो अपना चिंतन ध्यान वगैरह वो चलता रहता है, उसको तो अच्छा है ना, और टाइम मिल गया करने को सब। और हम रागी द्वेषी है तो निद्रा कम हो जाती तो हमें तो और अरे नींद नहीं आती क्या करें, तो गोली खा खा के सोना चाहते हैं। ये तो पाप कर्म का उदय ही कहलाएगा ऐसा। देखो जब सम्यक तो होता है या होने के पहले से ही इनका अनुभाग घटता चला जाता है। अनुभाग का अर्थ क्या है, फलदान शक्ति। अब बांधे तो है ये स्थान वृद्धि वगैरह वगैरह सब कर्म ऐसे बांधे थे पहले अधिक अनुभाग वाले, तो तत्व निर्णय करने जाता है जीव, तत्व विचार चलते रहते हैं, तो उन सत्ता में पड़े हुए कर्मों का अनुभाग अपने आप घटता है, कौन से, सभी पाप कर्मों का, और घटकर उदय में आता है। यानी पहले जितनी गाढ़ी उसके तीव्र निद्रा की बात होगी वो तो वो तरल हो जाती है उसके, क्योंकि वो तो आवश्यक है, जितनी निद्रा उतने तो होगी उसके, फिर भी ऐसी गाढ़ी निद्रा नहीं आएगी उसको कि अपना कार्य को भी नहीं कर सके। अभी हम आगे बढ़ेंगे, मोहनी की बात चलेगी। अभी दो प्रकार कौन से देखे अभी हमने भाई? दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन का अर्थ यहाँ क्या लेना है? श्रद्धा। श्रद्धा की विपरीतता, उसमें जो निमित्त है उसको कहेंगे दर्शन मोहनी। और चारित्र, सच्चे चारित्र का यानी स्वभाव पर्याय का नाम क्या है? चारित्र की स्वभाव पर्याय वीतरागता। और यहाँ विभाव क्या होगा? सरागता, यानी राग द्वेष। शुभ हो या अशुभ हो, कल बात आई थी ना, दोनों को ही अशुद्ध कहा है, दोनों को ही विभाव कहा है, उसमें निमित्त कौन है? तो ये चारित्र मोहनीय कर्म। अब उसके भेद हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए आपके उसमें टेबल है ना, नंबर पेज नंबर कौन सा है? 15 नंबर पर। अभी हम उसके नाम देखते हैं। देखो दर्शन मोहनीय में तो तीन है, एक है मिथ्यात्व, एक है सम्यक मिथ्यात्व और एक है सम्यक प्रकृति। देखिए अनादि से जीव मिथ्या दृष्टि है, तो उसकी सत्ता में एक मिथ्यात्व प्रकृति है और वो नए नए जो बांध रहा है वो भी मिथ्यात्व को ही बांध रहा है। तो ये अन्य दो प्रकृति का क्या होता है? कब होती है? जब पहली बार सम्यक दर्शन हो जाता है तो मिथ्यात्व के जो वहां परमाणु है उनमें से कुछ अनुभाग घटकर उसमें से ही सम्यक प्रकृति भी बनती है और सम्यक मिथ्यात्व भी बनता है। यानी मिथ्यात्व का जो तीव्रा अविभाग प्रतिच्छेद है, उसके अनुभाग है, फल लेने की शक्ति है, हम शक्ति में बात करेंगे, वो शक्ति घटकर ऐसे परमाणुओं को कहेंगे सम्यक मिथ्यात्व। उसकी शक्ति और घट जाती है उसको कहेंगे सम्यक प्रकृति। उसका क्या कार्य है, कैसे फल मिलते हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी केवल उनके नाम देखेंगे। अब चारित्र मोहनी की लिस्ट देखते हैं। ये नाम तो आपने शायद सुने भी होंगे। देखो नीचे दिखते हैं, अनंतानुबंधी मिल गया। चारित्र मोहनी की 25 प्रकृतियां हैं, उसमें चार चार की एक एक चौकड़ी करना, क्रोध मान माया और लोभ, और उसके चार प्रकार हैं, जिसको एक चौकड़ी, दो चौकड़ी, तीन चौकड़ी और चार चौकड़ी ऐसे कहते हैं। तो पहली चौकड़ी का नाम क्या है? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। ये जो कषाय कर्म कहलाते हैं। देखो जीव के भावों का भी वही नाम है और कर्म का भी वही नाम है। जैसे मिथ्यात्व जीव के भाव में भी होता है और मिथ्यात्व नाम का कर्म भी है, ऐसे अनंतानुबंधी क्रोध कर्म, ये कर्म की बात है, और अनंतानुबंधी क्रोध ये जीव का परिणाम है। हमें गुस्सा आया तो ये क्या हुआ? गुस्सा आया, ये क्रोध परिणाम हुआ, वैसे क्रोध नाम का कर्म भी है। इस तरह से सब में समझना चाहिए।
यह मुझे बहुत तकलीफ हो जाती है कि हाँ। कभी कर्म है न कभी जीव है।
हाँ, कभी कर्म की बात होती है, कभी जीव की बात होती है, तो कैसे समझना? जब परिणाम की बात करेंगे तो हम जीव की बात है। अब जब हम कहेंगे कर्म का उदय है या क्रोध का उदय चल रहा है, तो उदय चल रहा है कहेंगे तो कर्म की बात है, जब बंध की बात होगी तो ये कर्म की बात चलेगी। परंतु कर्म का उदय और जीव का परिणाम एट ए टाइम होते हैं। जैसे हम मिरर के सामने गए और वहां अपना प्रतिबिंब देखा, तो पहले हम गए कि पहले प्रतिबिंब आया? हाँ भाई आप क्या कहते हैं, आपके घर में क्या होता है?
भाई जाते तो
आप जाते तो ही आता है ना,
साथ में होता है।
किस साथ में होता है? दोनों साथ में होते हैं। फिर भी हम कहेंगे हम कारण है और वो कार्य है, ये तो उपचार कहा है ना हमने, अपनी ओर से हम देखते हैं तो वो कार्य कहलाएंगे। परंतु क्या वो आपकी अवस्था है कि मिरर की है? नहीं नहीं, आपको नक्की करना है।
प्रतिबिंब
आपकी अवस्था है कि मिरर की है?
मिरर की।
हाँ, क्योंकि वो रिफ्लेक्टिविटी मिरर की है ना, तो रिफ्लेक्शन वो मिरर की अवस्था है। फिर भी हम सामने गए और वो रिफ्लेक्शन, तो हम क्या कहते, ये मेरा रिफ्लेक्शन है। कहो कुछ भी परंतु समझो जो कुछ रियल चीज है, इसको कहते तत्व की दृष्टि आ जाती है। देखने का और सोचने का तरीका हमारा बदल जाता है। सामने हमने मोमबत्ती रखी है जलती हुई और वहां अग्नि दिख रही है मिरर में भी, तो हमें ऐसा लगता है ना, अरे अग्नि का कार्य है, वहां से कुछ रेज गए और वहां भी कुछ मिरर में बन गया, ऐसी बात नहीं होती है। तो वहां सामने है चीज और उसका प्रतिबिंब वहां पर है, फिर भी वो प्रतिबिंब जो है वो मिरर की अवस्था है। अभी यहां सोचो अपनी ओर ये सामने चीज है और हमने इसको जाना बिना बे, ये ज्ञान की पर्याय हुई ना, तो ये सामने है इसलिए जाना कि नहीं? यू डोंट नो, अभी निर्णय नहीं है। तो पहले मैं इससे हुआ कि नहीं वो तो बाद में देखेंगे, पहले ये देखना है कि जैसे अभी मिरर में हमने नक्की किया वो मिरर की अवस्था थी, अब ये पेन आपके जानने में आ रहा है, ये आपकी अवस्था है कि पेन की है?
पेन की
आपने जाना ये ज्ञान की पर्याय मिरर की है, ये पेन की है कि आपकी है? अपनी है, बराबर, ज्ञान की अवस्था है। तो ज्ञान की अवस्था ज्ञान से होती है क्या पेन से होती, इतना तो निश्चित करो।
ज्ञान से होती है,
किसी भी द्रव्य की अवस्था उसके अपने से होती है, पर द्रव्य से उसकी अवस्था होती नहीं है, ये तो निश्चित है ना। इसी को कहते तत्व विचार और तत्व निर्णय। वी हैव टू कम टू दैट कंक्लूजन बाय अवर सेल्फ। अभी डॉक्टर्स लोग जानते हैं, वो तो कोई पेशेंट आता है तो बहुत सारी लिस्ट आते हैं उनके मन में, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस 10 प्रकार, उसमें से फिर वो अनुमान लगा के सोचते और ये आप फिर वो डायग्नोसिस पर आते। इन पॉसिबिलिटीज में से कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है सोचते हैं ना, ज्ञान के द्वारा वी कम टू दैट पर्टिकुलर कंक्लूजन। ऐसे यहां तो हमें तत्व विचार के द्वारा निर्णय तक पहुंचना है कि ज्ञान की जो अवस्था है ज्ञान की पर्याय, किसी भी गुण की पर्याय, वो गुण जैसी है कि दूसरे किसी जैसी है, ज्ञान की पर्याय जानने वाली, जानना ये ज्ञान का कार्य है, तो ज्ञान में जो विशेषता है वही उसकी पर्याय में प्रकट होती है। ज्ञान की पर्याय में हल्का भारी रूखा चिकना होगा कि नहीं होगा, वो तो पुद्गल की पर्याय, वो उसको जानने वाला वो ज्ञान का कार्य होगा। ज्ञान ये जान रहा है कि ये चीज हल्की है या भारी है, परंतु वो जाना क्यों जाना, वो सामने चीज है इसलिए जाना कि ज्ञान की अपनी वैसी योग्यता इसलिए जाना? हाँ, तो योग्यता से अपनी, जो जिस द्रव्य की पर्याय है वो उसकी योग्यता से होती है। हाँ बिल्कुल, आपका प्रश्न है तब ऐसा समझना इसको निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों में होता है, परंतु कार्य नहीं होता। निमित्त होता जरूर है परंतु वो कार्य में कुछ नहीं करता। ये आया इसलिए ज्ञान हुआ तो हमारा ज्ञान पराधीन हो गया। तो केवल ज्ञानी ने इस चीज की ऐसी अवस्था अनंत काल पहले जानी थी, ख्याल है ना। ये तो चीज तो अभी ये परमाणु इस कंद रूप से है, पेन रूप से अभी विद्यमान है, तो केवल ज्ञानी ने इसको इस रूप से अनंत काल पहले भी जाना था कि नहीं जाना था? और इस कंद के एक एक परमाणु की और अनंत काल बाद की पर्याय भी उनके ज्ञान में विद्यमान है। अगर चीजों से ज्ञान होता तो उसकी अवस्था भी कहां बनी है, ख्याल में आता है ना। हाँ, इतना ही लेना कि जिस द्रव्य की जो पर्याय है वो उसके अपने से होती है, पर से नहीं होती।
तो दर्शन ने ज्ञान के साथ जाए।
हाँ,
तमे कोई पण द्रव्य लो।
हाँ,
ने जुओ। हाँ, दर्शन करो ने पछी ज्ञान।
हाँ,
गोइंग टू गैदर।
देखो देखो, आपका प्रश्न है जब हमने देखा, देखा इन्हें आंखों से देखा, ये ज्ञान की पर्याय हुई। उसके पहले जो कोई सामान्य ग्रहण हुआ, पदार्थ के अस्तित्व का हमें ख्याल आया, वो है इतना ही ख्याल आता है, उसको दर्शन कहते हैं। और वो कौन सी चीज है ये जब ख्याल आता है तो उसको ज्ञान कहते हैं। तो हमेशा वो तो जैसे हमने पहले फोकस लगाने के पहले क्या हो रहा है, वो है कुछ, तो फिर फोकस लगाते तो क्या है चीज ख्याल में आती है। ये तो दृष्टांत मात्र है। परंतु वहां कुछ है ये बात पहले ख्याल में आती है और फिर वहां पर उसका ज्ञान, जो डिफरेंशिएट हम करते हैं तो वो ज्ञान हो जाता है।
So then how does it work for the blind people?
ब्लाइंड पीपल के लिए उनके स्पर्श का ज्ञान चल रहा है, गंध का ज्ञान होता है उसके लिए भी, वो दर्शन दर्शन ने आंखों से देखना ये बात नहीं है, इसलिए उसके दो भेद किए थे, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। तो जो अंधा है तो उसको स्पर्श संबंधी ज्ञान होने के पहले जो कुछ वहां ग्रहण होता है, हाँ वो प्रतिभास होता है, ग्रहण होता है, उसको हम कहेंगे अचक्षु दर्शन चल रहा है। स्पर्शन ज्ञान के पूर्व में, गंध के ज्ञान के पूर्व में सुनता तो है वो, उसके पहले जो हो रहा है वो सब लेना, वो भी मन के द्वारा चल रहा है ना उसका कार्य, मन से तो वो भी जानता है, उसके भी पहले जानने के पहले जो होता है उसको दर्शन कहते हैं, उसको सामान्य अवलोकन कहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे।
हाँ, ये विपश्यना में आता है कि अपनी पांच इंद्रियों और मन से पहले तो कोई चीज का कॉग्निशन होता है, उसके बाद में होता है रिकॉग्निशन, उसके बाद में होता है इवैल्यूएशन, और फिर होता है रिएक्शन। तो उस रिएक्शन की स्टेज पर अपन किस तरह से रेस्पॉन्ड करते हैं, उससे बनते हैं संस्कार।
नहीं देखो, वो बात, वो विषय अलग है। हाँ। अभी हम अपने विषय से जुड़े रहेंगे। हाँ। क्योंकि क्या है, प्रश्नों में से बहुत फिर इतने हम दूर जाएंगे विषय से, तो जितना अपना विषय, अभी ज्ञान दर्शन की तो चर्चा चल रही है ना, उसके संबंध में हम जानेंगे क्या। और जो पारिभाषिक शब्द है वो क्या है, अलग अलग जो सेक्स है उसमें अलग अलग पारिभाषिक शब्द है, फिर उस पारिभाषिक शब्द का इस पारिभाषिक शब्द के साथ पहले में मेल जोड़ना चाहिए, फिर उसको सीखे। उससे अच्छा ये है कि हम इन सभी पारिभाषिक शब्दों को अपनी भाषा में सीखेंगे, फिर हमारे जो अन्य अन्य हमारा नॉलेज है उसके साथ हम खुद उसका जुड़ान करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अपने ही पारिभाषिक शब्दों से हम अनभिज्ञ है, पहले इसको सीख लेंगे, फिर दुनिया की जितनी कोई बात है या साइंस की टर्मिनोलॉजी है, अन्य अन्य सेक्स की टर्मिनोलॉजी है, उसको हम इसमें ढाल सकते हैं कि उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां क्या कहना चाहते हैं। तो अभी हम यहां आगे बढ़ेंगे। ज्ञान दर्शन के बारे में तो अपनी चर्चा हुई, अपने यहां मोहिनी कर्म की बात चलेगी। चार प्रकार की चौकड़ी है, एक का नाम है अनंतानुबंधी चौकड़ी, में किस किस को लेना बेन, क्रोध मान माया और लोभ। दूसरी चौकड़ी का नाम है अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, तीसरी प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, और चौथी संज्वलन क्रोध मान। इसके संबंध में चर्चा भी हुई थी ना पहले, ये कषाय में इसको लिया था, उसमें समझाया था भी बहुत। और फिर जो नौ कषाय है उसी नाम के कर्म भी है, कौन कौन से है देखो पुस्तक में लिखे ना, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, ये तो छह हुए, और स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुसक वेद, ये वेद संबंधी तीन और कर्म हुए। ऐसे ये 25 भेद है मोहिनी कर्म के, चारित्र मोहिनी के 25 और दर्शन मोहिनी के 3, ये 28 हो गए टोटल। अब अंतराय कर्म की हमने चर्चा तो कल की थी, उसके नाम जो है दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। अभी हम अघाती कर्मों की बात देखते हैं। वेदनीय कर्म दो प्रकार के हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। उसमें अभी हमने देखा था जो इंद्रिय संबंधी जो है ना, इंद्रियों के विषय, उसमें जो सुख की वेदन करावे उसको हम कहेंगे साता वेदनीय। जीव को उसमें सुख की अनुभूति हो रही और उसमें उसको दुख की फीलिंग हो रही है तो उसको कहेंगे असाता वेदनीय। आयु कर्म की भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई अपनी, चार प्रकार के आयु कर्म है, मनुष्यायु, देवायु, तिर्यंचायु और नारकायु। गोत्र भी दो प्रकार के है, नाम कर्म तो बाद में देखेंगे। दो प्रकार के कौन से है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। अब ये नाम कर्म की हमने देखते हैं भी, उसमें से 93 प्रकृतियां हैं। उत्तर प्रकृति कितनी है, 93, तो 93 कैसे याद करना, तो उसमें से कितनी ग्रुप वाली है। जैसे हम कहेंगे गति नाम कर्म, तो हमें मालूम है चार गतियां हैं, तो मनुष्य गति नाम कर्म, तिरंज गति, उसको हम केवल गति नाम कर्म इतना याद रखेंगे तो चारों को याद करने की जरूरत नहीं है, हम समझ जाएंगे। जाति नाम कर्म कहेंगे तब, जाति किसको कहना, हाँ एकेंद्रीय जाति, द्विंद्रीय जाति, ये हिंदू मुस्लिम वाली जाति नहीं तो एकेंद्रीय जाति, द्विंद्रीय जाति, तीन्द्रीय जाति, चतुरिंद्रीय जाति, पंचेंद्रीय जाति, ये सारे जाति नाम कर्म कहलाएंगे। वैसे शरीर नाम कर्म की बात आएगी तो औदारिक शरीर नाम कर्म, वैकिरिक शरीर नाम कर्म, अब हम पढ़ेंगे इसके नाम। देखो अभी हम आगे के पृष्ठ पर देखते हैं जहां पूरे उसका टेबल बनाया है। तो ये जो ग्रुप वाली है उसको कहेंगे पिंड प्रकृति। क्या कहेंगे नरेन बे? पिंड प्रकृति। पिंड है ना ग्रुप उसका। तो ये याद रखने के लिए कितनी घट जाती है? 42 रह जाती है। पिंड प्रकृति और अपिंड प्रकृति को मिलकर हम देखेंगे तो 93 के बदले अभी हमको 42 याद रखने में आसान है, इसलिए वो 42 हो जाती है। तो उसमें से हम अभी देखते हैं। देखे गति चार है, अभी हमने देखी उसके नाम। जाति नाम कर्म पांच प्रकार के हैं। कौन से आप एकाध नाम बताओ ज्योत्सना बे? जाति नाम कर्म कौन कौन से देखे हमने? कोई एक नाम बताओ आप। जाति किसको कहा था हमने, याद है? एकेंद्रीय जाति को जाति कहा था। और कोई जाति मालूम है? हाँ बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ ये इसको जाति नाम कर्म कहते हैं, वो भी पांच है। शरीर, ये शरीर के पांच प्रकार नहीं बता रहे, शरीर नाम कर्म के लिए। ऐसा क्यों कह रहे? ये औदारिक शरीर है वो काहे से बना है? आहार वर्गना से। वीना बेन, औदारिक शरीर नाम कर्म काहे से बना है? शरीर नाम कर्म, बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि ये नाम कर्म का भेद है। अब तो होशियार बैच है सब, मेरिट बैच है। क्योंकि हम वहां पूछते हैं ना, ये तो औदारिक शरीर नाम कर्म, वैकरिक शरीर नाम कर्म काहे से बने हैं? तो कहते लोग आहार वर्गना से बने। वो औदारिक शरीर की बात नहीं हो रही, औदारिक शरीर नाम कर्म की बात। सभी नाम कर्म काहे से बने हैं? तो कार्मन वर्गना से। तो ऐसे ये पांच शरीर नाम कर्म है। कौन कौन से? औदारिक शरीर नाम कर्म, वैकरिक शरीर नाम कर्म, आहारक शरीर नाम कर्म, तेजस शरीर नाम कर्म और कार्माण शरीर नाम कर्म। हमने देखा उसके उदय में क्या होता है, योग उत्पन्न होता है और उस योग के द्वारा क्या होता है, कर्म और नो कर्म, इनके परमाणुओं का ग्रहण होता है। इतनी बात अभी, यहां तक तो इतनी काफी है। अब ये बंधन और संघात नाम के उसी नाम के और पांच पांच कर्म है। जैसे अभी हमने औदारिक शरीर नाम कर्म देखा, वैसे औदारिक बंधन नाम कर्म। तो ये बंधन से क्या बात होती है? तो जो औदारिक या वैकिरिक शरीर संबंधी परमाणुओं का ग्रहण होता है वो इकट्ठे एक स्कंद रूप से बंध जाते हैं, वो बंधन नाम कर्म का कार्य है। और उसके आगे का है संघात नाम कर्म, उसका कार्य क्या है? तो ये जो औदारिक आदि शरीर रचना हुई है तो छिद्र रहित ऐसे उसकी एक पूरा स्कंद रूप से रचना होती है, उसको संघात नाम कर्म कहते हैं। उसके आगे का नाम है संस्थान। ये छह प्रकार के संस्थान इन्हें आकार होते हैं। आपने नाम सुने होंगे, वज्र वृषभ नाराज, नहीं ये संस्थान की बात है, समचतुरस्र संस्थान, प्रोपोर्शनेट बॉडी जिसको हम कहेंगे। और फिर न्यग्रोध परिमंडल, यानी कैसा, ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है। न्यग्रोध किसको कहते मालूम है? वटवृक्ष को न्यग्रोध कहा है, न्यग्रोध परिमंडल। वटवृक्ष कैसा है? ऊपर बड़ा आकार है और नीचे छोटा है ना, वो पतला है। ऐसा जिसका आकार है उसको क्या कहेंगे? न्यग्रोध परिमंडल। तो वटवृक्ष को कौन सा संस्थान होगा?
सहनन
में संस्थान,
संस्थान
नहीं, वो तो हमने दृष्टांत दिया है। सभी एकेंद्रियों को तो हुंडक संस्थान होता है।
हाँ, संस्थान,
संस्थान। ये तो हमने वटवृक्ष का एग्जाम्पल दिया। कोई आदमी ऊपर तो ऐसा बड़ा दिखता है, नीचे पतला है ना कमर के नीचे, तो उसको ये ऐसा दृष्टांत देके समझाए। झाड़ में तो ये संस्थान होता ही नहीं है। ऐसे ये छह प्रकार के संस्थान है। कौन कौन से? समचतुर, इसके नाम देखने आपको, देखो आगे पृष्ठ निकालना
22
पर।
मेरा पीछे
इसमें तुम ये बंधन की बात है, सहन संस्थान कहाँ है? हाँ हाँ, इसमें हिंदी में 24 पृष्ठ है,
22 है
यहाँ, 22
गुजराती में 22 है,
22 है। देखो उसके हम नाम देखते हैं,
एक नंबर।
इन कर्मों का कार्य क्या होता है, इसके उदय में शरीर का विशिष्ट आकार होता है। तो समचतुरस्र संस्थान यानी समान चौकोर आकार, सुडोल आकार। दूसरा है न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, वटवृक्ष समान ऊपर का भाग चौड़ा और नीचे का भाग पतला। तीसरा है स्वाति, ऊपर का भाग पतला है और नीचे का भाग चौड़ा है। चौथा है कुब्जक, जिसे हम कुबड़ा कहते हैं, वहां क्या लिखा है, कुंजो कुबड़ो। हाँ। पांचवा है वामन संस्थान, जिसको हम ठिंगना कहेंगे, द्वार। और बाकी हुंडक संस्थान, यानी वो कोई ऐसा डेफिनेट आकार नहीं बता सकते, उसको अवक्तव्य कहा, विशिष्ट उसका आकार ऐसे कोई पर्टिकुलर शेप में नहीं बता सकते, उसको कहते हैं अनेक प्रकार के अवक्तव्य आकार। देखो ये नारकी है, उनके भी हुंडक संस्थान होता है, एक इंद्रियों के भी सारे हुंडक संस्थान होते हैं, और मनुष्य आदि में भी हो सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, अपनी लिस्ट देखेंगे। उसके बाद छह प्रकार के सहनन बताए, ये सहनन के भी नाम हम देखते भी, आप जहां देखते थे उसके आगे। तो सहनन का अर्थ होता है हड्डियों की मजबूती कितनी है, मजबूताई कितनी है, और उनका बंधन, उसका वेष्टन। अभी वो जो साइंस वाले वो समझेंगे, पेरियोस्टियम जिसको हम कहते हैं, उसका भी कैसे है, उसका वर्णन जो आता है इसमें, तो हम देखते हैं इनके नाम। देखो ये छह प्रकार के है ना, वज्र वृषभ नाराच सहनन, जिसमें यानी जिस शरीर में वज्रमय हड्डियां, यानी वज्र की हड्डियां, वज्र जैसी। वज्र किसको कहते हैं मालूम है, लोखंड को वज्र नहीं कहते, वज्र तो
मजबूत,
बहुत मजबूत, इतना कि वो वज्र का प्रहार हो तो पहाड़ भी टूट जाए, वो हीरे जैसे डायमंड वो भी टूट जाए ऐसे, वो तो वज्र, वो इंद्र का कहलाता है अस्त्र शस्त्र, तो ये वज्र समान कहते हैं। तो वज्र स्वयं नहीं टूटता है, तो बिल्कुल अनब्रेकेबल ऐसी जो चीजें होती है, तो वज्र समान, वज्रमय हड्डियां, वज्रमय वेष्टन से वेष्टित है, और वज्रमय नाराच, नाराच यानी वो कीला, उससे कीलित है। ये हमारे ज्वाइंट जो एक दूसरे के ऊपर घूमते हैं ना, ये तो ये नी ज्वाइंट है, ये कोई हड्डियां एक दूसरे, मगर वो जुड़ी नहीं है, वो मसल्स के द्वारा वो एक दूसरे के साथ चिपकी हुई है, दे आर मूविंग ऑन ईच अदर, परंतु उनके ज्वाइंट ऐसे होते हैं कि वो कीलित होते हैं, कीले के द्वारा फिक्स होते हैं, यानी जैसे ऐसा इसके कीला डाल दो उसके, और ये मूविंग तो है ऐसे ज्वाइंट, फिर भी उसमें कीला है, तो वो कीला भी कहे का है, वज्र का है, उसको वज्र वृषभ नाराज सहनन कहते हैं। अब दूसरा है वज्र नाराज, उसमें क्या होता है, हड्डियां तो वज्र समान होती है, परंतु उसका वृषभ यानी वेष्टन, उसका ऊपर का कवरिंग, उसको नहीं होता, वो वज्र का नहीं है, सामान्य है, और जो नाराच है वो वज्र समान है, इसलिए उसको वज्र नाराच सहनन कहते, वृषभ उसमें नहीं लिया है। फिर बाद में है नाराच सहनन, जिस शरीर में हड्डियों की संधि सामान्य नाराच द्वारा कीली थी, यानी वहां भी वो कील तो होती है, संधि यानी ज्वाइंट्स, परंतु वज्र समान नाराज नहीं है। फिर चौथा नंबर है अर्ध नाराज, यानी वो जो जॉइंट्स है वो नाराज के द्वारा, कील के द्वारा अर्ध कीलित है, पूरे के पूरे नहीं है, आधे में उसके जॉइंट्स वो कीले से कीलित है। पांचवा है कीलित, उसमें वज्र की हड्डियां नहीं है परंतु वे परस्पर में कीलित है, यानी जॉइंट है, तो उसको कीलित कहते हैं। और असंप्राप्त रसुपाटिका जो है, तो शरीर में हड्डियां परस्पर में प्राप्त नहीं होती, प्राप्त नहीं होती यानी वो जॉइंट्स तो है परंतु हड्डी एक दूसरे के साथ वो कीलित नहीं है। तो क्या है, जैसे हम उंगली के यहां एक हड्डी है, यहां एक हड्डी है, मुंह तो होती है परंतु उसमें कोई कील नहीं है, आप तो जानते हैं ना, तो क्या है, वो टेंडन्स और मसल्स के साथ एक दूसरे से ऐसे फिक्स है और उसमें मूवमेंट चलती है, इसको कहते हैं असंप्राप्ता सुरुपाटिका सहनन, असंप्राप्त असुरुपाटिका, ऐसे उसका पूरा नाम है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, देखो इसके सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे होते हैं कि जो चरम शरीरी होता है उसी भव में मोक्ष जाने वाला उसके वज्र वृषभ नाराज सहनन पाया जाता है। ऐसे ही जीव को वो क्षपक श्रेणी का पुरुषार्थ होगा। ये सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो सहनन के कारण मोक्ष होता ऐसा नहीं। ऐसा अगर देखेंगे तो जो सातवें नरक में जाता है वो भी वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले जीव ही सातवें नरक में जाते हैं। हम आपको ऐसी योग्यता नहीं है कि ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर सकते कि सातवें नरक में जाए। क्या वहां भी पुरुषार्थ से जाते हैं? हाँ, उल्टा पुरुषार्थ है। उस जाति का पुरुषार्थ करेगा तो वहां चला जाएगा। ऐसे भी है, अभी स्त्रियों में भी, अभी आप पंचम काल में भी, हम कहते ना पंचम काल में मोक्ष नहीं है, तो यहां भी नीचे के तीन सहनन पाए जाते हैं, ऊपर के नहीं। यानी श्रेणी चढ़ना है अर्थात आठवां नौवां दसवां गुणस्थान ग्यारहवां, यानी उपशम श्रेणी भी कोई नहीं चढ़ेगा और क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले भी इस काल में कोई नहीं होगे। और निमित्त रूप से यहां कहेंगे अभी तो ये ऊपर के तीन सहनन नहीं है।
कौन से?
वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं है, वज्र नाराज सहन नहीं है और नाराज सहनन भी नहीं है। ऐसे ही स्त्रियों में भी नीचे के तीन सहनन पाए जाते हैं, ऊपर के तीन सहनन स्त्रियों में नहीं होते हैं। इसलिए स्त्री को भी जो कहते हैं वो तो चरम शरीरी नहीं है, समय दर्शन प्राप्त कर सकती है, पांचवें गुणस्थान तक का पुरुषार्थ हो सकता है। ऐसा जो दूसरे भव में तो पुरुष ही हो जाता है और फिर बाद में देव में से आकर फिर पुरुष होकर मोक्ष चला जा सकता है। यानी स्त्री को मुक्ति नहीं ऐसा जब कहते तो चिढ़ आती है ना, क्यों क्यों हमने अपने को स्त्री ही माना है, हमने अपने को जीव नहीं माना है, तो क्यों हमको चिढ़ आती है? आप जीव हो, स्त्री पुरुष ये कोई हो नहीं, तो ये उसमें गुस्सा आने की क्या बात है? और यहाँ जो जैसा है उस वस्तु स्वरूप का ज्ञान किया जाता है। अब सत्य सुनकर भी अगर हमको क्रोध आता है, क्यों आता है? ये अपने से, अपने उपादान से, क्रोध भी अपने उपादान से आता है, ख्याल है ना। हमें ऐसा लगता है कि पुरुषों ने शास्त्र लिखे ना, तो इसलिए वो स्त्री को मुक्ति नहीं कह, ऐसी बात नहीं है। ये आचार्यों ने अपने मन से ये बातें नहीं लिखी है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी में जो उपदेश आया है वस्तु स्वरूप का पूरा ज्ञान करा है कि कौन सी पर्याय की कैसी अवस्था हो सकती है, कौन सा जीव कहाँ जन्म ले सकता है, कितना पुरुषार्थ कर सकता है, सब कुछ निश्चित है। जैसे सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कौन जीव कर सकता है, तो कहते चारों गति के कर सकते, सातवें नरक का नारकी भी। आपको अचरज लगेगा, सातवें नरक में असंख्यात नारकी सम्यक दृष्टि है वहां, और वहां सम्यक्त्व के साथ कोई पैदा होता नहीं है, वहां जाने के बाद उन्होंने सम्यक्त्व प्राप्त किया है। और हम यहाँ पर सम्यक्त्व को ऐसा जो कोई ऐसे हवा बना लेता है उसका, और कुछ असंभव बात लगती है, ऐसी बात नहीं है। असंख्यात सम्यक दृष्टि तिर्यंच है, असंख्यात देव है, मनुष्य संख्यात है, फिर भी ये जानना है कि चारों गति के जीव प्राप्त कर सकते हैं सम्यक, पर देव और नार के वो पांचवा गुणस्थान भी नहीं प्राप्त कर सकते, तिर्यंच प्राप्त कर सकते हैं। ये सर्वार्थ सिद्धि के देव जो नहीं कर सकते वो तिर्यंच कर सकते हैं। तो
तब कोई गुस्सा नहीं आता,
हाँ, तब नहीं गुस्सा आता है। अच्छा। सर्वार्थ सिद्धि वाले तो शुक्ल लेशा कितने भले परिणामी, ना कोई हिंसा नहीं, कोई यानी उपजीविका करने नहीं, कोई पाप नहीं, हिंसा जो चोरी इसमें कुछ नहीं चलता है वहां, तो 33 सागर तक तत्व चर्चा करते फिर भी गुणस्थान चौथा, क्योंकि उतनी अंतरंग स्थिरता होने के लिए जो निमित्त भूत बातें होती है तो वह वहां उन जीवों की ऐसी योग्यता नहीं होती, ये योग्यता ही उसका कारण है। तो जिसकी नहीं होती उसकी नहीं होती, और जिसकी होती वहां तो हमको जानना है ना, ये ज्ञान का विषय है। तो इसमें ऐसा क्यों, तो बहुत बार ये धवला आदि ग्रंथों में आता है, ऐसा क्यों जब प्रश्न पूछते हैं तो आचार्य भगवान वहां उत्तर देते हैं कि जो वस्तु का स्वरूप है वो आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए नहीं होता। वस्तु का स्वरूप तो वस्तु का स्वरूप होता है बस।
ये तीन सहनन से क्या होता है? हाँ। निचले तीन सहनन,
देखो निचले तीन सहनन है ना, अभी भरत क्षेत्र में नीचे के तीन सहनन चल रहे हैं, तो वहां तो सम्यक दर्शन भी हो सकता है, पांचवा गुणस्थान यानी सातवें गुणस्थान तक का पुरुषार्थ हो सकता है नीचे के तीन सहनन। इसलिए हमने देखा है पंचम काल के अंत तक मुनि आर्य का श्रावक श्राविका वो तो उनके नाम भी प्रसिद्ध है तो वो रहेगी अंत तक और जिन धर्म भी रहेगा अंत तक। आपने ये भी सुना होगा वो चंद्रगुप्त के 16 स्वप्नों के बारे में सुना है कि नहीं सुना? चंद्रगुप्त का नाम तो सुना है, 2000 साल पहले हुआ था और वहां जब वो अंतिम भद्रबाहु हुए थे वो तो निमित्त ज्ञानी थे तो ये चंद्रगुप्त को सपने आए थे तभी और उसका फल पूछा गया था। बहुत सारे उसमें सपने हैं तो उसमें से एक ऐसा उसने सपना देखा कि सरोवर है जिसको क्या है तालाब कहते हैं, बीच में सूखा है और बाद में बाजू में पानी है। इसका अर्थ क्या है? तो जहां अभी ये तीर्थंकरों की वाणी ये सब धर्म चला है वहां तो सब सूखा रहेगा, बाजू में सारे वो आप लोग हैं ना यहाँ बैठे हुए अमेरिका वाले, वहां धर्म चला चलेगा और जहां वो मूल शुरुआत हुई वहां तो सूखा रह जाएगा। हाँ ऐसे लिखा है उसमें। बहुत सारे वो 16 सपना और उसके सारे अलग अलग उसके जो कुछ मीनिंग्स वो सब बताए हैं और वैसी सारी बातें अभी होते हुए दिखाई देती है। हाथी पर कौन बंदर बैठा है यानी जो सारे राज करते हैं वो तो अभी वो तो नीचे के जाति के हो गए ऐसा बताया था उसमें। अब तो चल ही रहे ना शेड्यूल क्लास वाले ही सब ऊपर चले गए। ऐसा भी लिखा है कि ये जो बकरी होते हैं ना बकरी और उसने ऊपर से सिंह की खाल ओढ़े धारण किए है तो बकरिया तो ऐसा क्यों? तो अभी इस काल के मुनि भी ऐसे हो गया ऐसा लिखा है उसमें। अच्छा। और ये तब वो तब बातें बताई थी जब ये बातें नहीं थी 2000 साल के पहले की बात है। तो ये तो ऐसे जो कोई चल रहा है हमें तो ऐसा लगता है ऐसा क्यों ये धर्म के क्षेत्र में ऐसी बातें क्यों चल रही? ये आपने कल कहा ना काल दोष है, किसने कहा? आपने पूछा था काल का दोष काल दोष का अर्थ क्या? तो ये बातें ऐसी होने वाली है होती रहती है हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। अभी हम अपने को इतना जिसको कहते हैं ना लकी समझे कि ये सत्य मार्ग अपने हाथ में आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं ये सहनन की बात हो गई यानी कोई भी सहनन के द्वारा पुरुषार्थ नहीं होता है। सहनन है इसलिए पुरुषार्थ हुआ ये बात नहीं है। उस जीव अपने योग्यता से पुरुषार्थ करता है तब वहां सामने ऐसे विशिष्ट सहनन पाए जाते हैं। तो निमित्त का ज्ञान क्यों करना? हम निमित्त को देखकर वहां ऐसा कार्य संभव है कि नहीं इसका अनुमान लगा सकते हैं। ख्याल है? नहीं, निमित्त से कार्य नहीं होता परंतु निमित्त की ओर जब कार्य होता है तो अनुकूल निमित्त होता ही है। निमित्त कुछ नहीं करता है फिर भी वहां निमित्त होता है और निमित्त की तरफ देखकर हम यहां कैसा कार्य हो सकता है या नहीं हो सकता इसका अनुमान लगा सकते हैं। निमित्त है इसलिए कार्य होगा ही ऐसा नहीं है परंतु अब हाँ जिसको समय दर्शन होना है और हम निमित्त की ओर देखा तो वहां कल बात आई ना अदेव को देव मानना या अदेव वगैरह की बात आएगी आज जैसे पत्थर को देव मानना नदी को देव मानना उसको पूजना पीपल के वृक्ष को देव मानकर पूजते हैं ये जो सारे अदेव को देव मानना ऐसी बातें चल रही है और वो कहता है मैं सम्यक दृष्टि हूं तो आप समझना ये निमित्त क्या है वहां कार्य क्या हो सकता है। निमित्त को ओर देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कार्य यहां होना संभव है या नहीं है। अब कोई ईश्वर को कर्ता मानता है और बाह्य में भले बहुत सदाचारी होगा कोई तप करता होगा तो उसकी मान्यता तो खोटी चल रही है। ईश्वर को इस जगत का कर्ता मान रहा है अब क्या वो समय दृष्टि हो सकता है कि नहीं हो सकता? हमें तो कोई कोई नाम लेकर भी बहुत सारे पूर्व के संतों के नाम अलग अलग जो हिंदू के हो या अन्य के हो उसके नाम लेकर पूछते कि इसको समय दर्शन था कि नहीं था। उन्होंने बोला ये ऐसा वस्तु स्वरूप है आप खुद उसका निर्णय करो। ख्याल है ना ये निर्णय अपने को करना आना चाहिए। इसने बताया हाँ और उसने बताया ना तो हम क्या हुए वो मुरादाबादी लोटा कहते ना इधर से थप्पड़ मारे उधर लुढ़क गया उधर से किसी ने बताया इसलिए ने हमें स्वयं निर्णय तक आना चाहिए। देखो अभी हम आगे बढ़ते हैं अब अपना वो लिस्ट फिर निकालनी हाँ कितने पेज है, 22 नंबर नहीं,
16
नंबर, हाँ हमें इसमें 18 नंबर है हिंदी में। अब हमने सहनन देखा, अंगोपांग, अंग और उपांग, अंग यानी मेन अवयव जिसको कहते हैं हाथ पैर आदि, और उपांग यानी उसके सब अवयव, उंगलियां है अन्य जो कोई है उसको उपांग कहते हैं। तो इसके निमित्त से ये अंगों की और उपांगों की रचना होती है, इतना ही उसका कार्य। शरीर तो 5 लिखे और अंगोपांग कितने लिखे?
3।
कौन से शरीर में अंगोपांग नहीं हो गए? बहुत अच्छा, तेजस और कारमान में अंगोपांग नहीं हो गए, औदारिक शरीर में होते हैं, वैक्रिक शरीर में होते हैं और आहारक शरीर में भी होते हैं। अब उसके आगे है स्पर्श रस गंध वर्ण। देखो आपके यहाँ विषय चला था ना स्पर्श की 8 पर्याय, देखा है आपने?
हाँ,
कि बहुत दिन हुए देखकर,
अभी किया था,
अभी अभी किया है ना, हाँ तो आपको याद है। तो स्पर्श की 8 पर्याय, अब यहाँ पुद्गल के किसी भी स्पर्श की बात नहीं है, यहाँ जो स्पर्श नाम कर्म है उसके कारण जीव के जो शरीर की रचना हुई है, उस शरीर का स्पर्श कैसा है, हल्का है, भारी है, ठंडा है, गर्म है, कड़ा है, नरम है, जो कुछ चिकना वगैरह, तो उसमें ये निमित्त है। ये स्पर्श नाम कर्म किसमें निमित्त है? शरीर का जो स्पर्श की पर्याय है, अभी जो 8 पर्याय है उन नाम कर, उस नाम के नाम कर्म है, जैसे उष्ण स्पर्श नाम कर्म, उसके उदय में शरीर का स्पर्श उष्ण होगा, शीत स्पर्श नाम कर्म, ऐसे समय लगाना, ऐसे स्पर्श के फिर रस के, रस की पर्याय कितनी है? खट्टा, मीठा, कड़वा, कचायला, चरपरा। जैसे तीखा रस है तो शरीर का रस कैसा है? तीखा। आपने ऐसे कोई देखा है? मिर्ची नहीं देखी? वो भी वनस्पति कायिक है ना, उसके भी शरीर का जो रस है वो तीखा रस है, तो वहां वो तिक्त रस नाम कर्म का उसका उदय। अभी वो खट्टी जो है इमली आदि उसमें वो लगाना, तो ऐसे हरेक में लगा सकते हैं।
षटरस क्यों कहते हैं?
वो षटरस अलग,
अच्छा।
और ये जो रस के जो भेद है वो रस की पर्याय ये 5 अलग है, वो षटरस में जो षटरस का त्याग वगैरह बात आती है तो वो अलग बात है। यहाँ गंध के 2 पर्याय है, सुगंध दुर्गंध, उस नाम कर्म के उदय से वैसे सुगंध या दुर्गंध वाली पर्याय वाले शरीर में चलेगी, वो उसकी रचना होगी। जैसे हम कहते हैं वो फूल के सुगंध आते हैं, तो उसमें वो सुगंध नाम कर्म का उदय चल रहा है। वर्ण के 5 भेद है। अब वैसे वर्ण के बहुत सारे शेड्स होते हैं, इसी के कॉम्बिनेशन में समझ लेना, ये मेन यहां बता दिए, ये स्पर्श रस गंध वर्ण हुए। ये गत्यानुपूर्वी 4 होते हैं, हमने जैसे गति नाम कर्म 4 प्रकार के देखे हैं, वैसे गत्यानुपूर्वी भी 4। इसका कार्य क्या होता है? तो जब विग्रह गति में जीव जाता है, विग्रह गति किसको कहना?
एक शरीर छोड़ दूसरे,
हाँ एक बहुत, अभी एक पर्याय छूट गई, मरण हुआ और दूसरे जहां जन्म लेना है वहां जीव पहुंचा, तो उसके पहले में, बीच में, रास्ते में ट्रांजिट जो है, हो सकता है सीधा सिंगल लाइन में चला जाए और वही यहां मरा और बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन में वहां उसका जन्म होना हो तो एक समय में पहुंच जाता है। और मान लेते अभी यहां जाकर फिर वहां जन्म लेना है, कोने में तिरछा तो नहीं जा सकता, स्ट्रेट जाना है उसको, जैसे वो शतरंज में हाथी कैसा स्ट्रेट जाता है ना, इधर या उधर, ऊंट जैसा तिरछा नहीं जाता वैसे ये सीधा जाएगा, फिर एक मोड़, मोड़ यानी टर्न लेके, राइट एंगल में टर्न लेके चला जाएगा, तो उसको कहेंगे एक मोड़। कहीं कहीं 2 मोड़ लेने पड़ते क्योंकि वहां से फिर उसको वहां और कहीं जाना है, या 3 मोड़, अधिक से अधिक 3 मोड़ में कहीं भी जीव पहुंच ही जाता है। तो जो मोड़ वाली गति है तो वहां जो है मोड़ के पहले पहले उसको आकार कैसा होगा, तो संस्थान नाम कर्म का उदय जहां जन्म लेना है वहां पहुंचने पर चलो हो जाता है, विग्रह गति में नहीं। अभी मनुष्य है कोई, मरने तक उसके संस्थान नाम कर्म का उदय था तो उसके मनुष्याकार चला, अब ये मनुष्य शरीर तो छोड़ दिया, और अभी कोई वो मनुष्य मरकर अभी घोड़ा, घोड़े के पर्याय में उत्पन्न होने वाला है। अब अमेरिका का कोई मनुष्य यहां मरकर वो इंडिया वाला घोड़ा होना है और मान लेते उसके एक मोड़ लेना पड़ा, तो मोड़ के पहले पहले उसका आकार कौन सा होगा, क्योंकि संस्थान जो घोड़े संबंधी जो आकार है वो कब शुरू होगा, वहां इंडिया में पहुंचेगा, जहां जन्म लेना है वहां पहुंचेगा, तब उसके पहले आकार क्या रहेगा,
मनुष्य
का, क्योंकि संस्थान नामकर्म तो वहां पर शुरू होता है। तो ये मनुष्य का आकार कायम रहा, उसमें निमित्त कौन है, तो गत्यानुपूर्वी। अभी तिर्यंच में जन्म लेना है ना, तो उसको तिर्यंच गति का उदय शुरू हुआ है और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी का भी उदय शुरू हुआ है। तो तिर्यंच गत्यानुपूर्वी के कारण ये उसका पूर्व भव का मनुष्य का आकार कायम रहा। तो मनुष्य के आकार का घोड़ा देखा आपने, नहीं देखा, अभी दिखा है ना आपको, ये आगम का चश्मा लगाएंगे ना, कौन सा आगम चक्षु, तो हम कुछ ना कुछ देख सकते हैं, क्योंकि हम तो देखते ना कि जावाने के ज्ञान तय सूझे लोकालोक, लोक और अलोक की सब रचना हमें बैठे बैठे आगम का ज्ञान करने से हो जाती है, है कि नहीं, हमने सुना तो है। तो यहाँ जो पूर्व भव का आकार कायम रहता है विग्रह गति में, अकेला विग्रह गति में इसका उदय होता है, गत्यानुपूर्वी का उदय अन्यथा कहीं भी नहीं होता है, बस उसका इतना ही कार्य। बनती तो हर समय है, गति हर समय बन रही है, गत्यानुपूर्वी भी हर समय बन रही है, परंतु उसका उदय कब होगा, मोड़ वाली गति से जाएंगे तो, नहीं तो उसका क्या होगा, पड़ी रहेगी ऐसे। हाँ बोलो, आपका क्या प्रश्न है।
जो एक समय में दूसरा जन्म लेता है,
हाँ,
उसमें विग्रह गति नहीं होती ना।
हाँ, उसको अविग्रह गति यानी बिना मोड़ वाली गति कहते, उसको रुजु गति कहते, सीधा सीधा गमन हुआ तो उसका डायरेक्ट उसी समय में संस्थान नाम कर्म का उदय शुरू हो जाता है, तो उसको गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होगा। हाँ, अभी अपना समय होने को आया, एक मिनट है, अभी हम आगे के देखते। विहायोगति, विहायोगति यानी चाल, जिसको हम गेट कहते हैं, GAIT गेट, कैसा चलता है। ये डॉक्टर लोग क्या है, पेशेंट आता है ना तो वो उसकी गेट देखकर डायग्नोसिस उनका आधा हो जाता है, क्यों बेन, हाँ, पार्किंसोनिज्म का पेशेंट आता है तो पता चलता है ना, ये इसी गेट के ऊपर उसका डायग्नोसिस हो जाता है। तो ये गेट विहायोगति, गमन उसका कैसा होता है, तो ये इस कर्म के उदय में ये प्रशस्त यानी शुभ विहायोगति होगी, जिसको हम हाथी की चाल है, हंस की चाल है, और फिर वो बदक की चाल है, तो कैसे कहते हैं, तो ये जो चाल है शुभ या अशुभ उसमें बताए, दो भेद किए ऐसे, ये यहां तक के है ये सारे पिंड प्रकृतियां, ग्रुप वाली प्रकृतियां, और आगे वाली है वो सिंगल सिंगल है, उसकी चर्चा भी हम दोपहर में करेंगे। इस चैप्टर में तो केवल नाम ही नाम है और कुछ इसका खास प्रयोजन नहीं है, फिर भी हम उसको दोपहर में देख कर फिर अपने आगे उसकी बात हम बढ़ाएंगे। बोलो 2400 भगवान की जय।